ये आकाशवाणी दिल्ली है। मुख्य समाचार। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकार को आशा कार्यकर्ताओं के मौजूदा भत्ते को 3,000 से बढ़ाकर 9,000 करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लंबित वेतन को जल्द जारी करने की सलाह दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की घोषित पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने की आलोचना। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए योग्यता संवर्धन योजना के तहत आवेदन मांगे। नववर्ष 2025 के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली तैयार। प्रशासन ने भी खास दिशा निर्देश जारी किए। हॉकी इंडिया लीग में आज दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं अतहर सईद। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकार को आशा कार्यकर्ताओं को दिए जाने वाले भत्ते को बढ़ाने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के महीनों से लंबित वेतन को जल्द से जल्द जारी करने की सलाह दी। उपराज्यपाल कार्यालय ने बताया कि श्री सक्सेना ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। इसके बाद उपराज्यपाल ने आशा कार्यकर्ताओं के मौजूदा भत्ते को 3,000 से बढ़ाकर 9,000 करने की सलाह दी। इससे पहले दिल्ली से सांसद बांसुरी स्वराज ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के वेतन जारी करने में हो रही देरी को लेकर उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। मुलाकात के बाद सुश्री स्वराज ने कहा, ये बेहद शर्मनाक है कि दिल्ली सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पिछले 7 महीने से वेतन नहीं दिया है।
दिल्ली सरकार ने पिछले 7 महीनों से आंगनवाड़ी वर्कर्स का जो वेतन है वो उनको नहीं दिया है। दूसरी तरफ आशा वर्कर्स मात्र 3,000 रुपया महीने की सैलरी पे काम कर रही है, उनका स्टाइपेंड नहीं बढ़ाया गया है। इसीलिए आज हम माननीय उपराज्यपाल जी के यहाँ पर आए हैं उनके समक्ष गुहार लगाने के लिए।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा घोषित पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने करोलबाग के गुरुद्वारा संत सुजान सिंह महाराज से ग्रंथियों के रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि अगर दिल्ली में फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली सरकार इस योजना के तहत हर महीने 18,000 रुपये की सम्मान राशि दिल्ली के हर ग्रंथी और पुजारी को देगी। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ग्रंथियों और पुजारियों की देखरेख करे। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव भाटिया ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल द्वारा सोशल मीडिया पर डाले गए एक वीडियो को लेकर उन पर निशाना साधा। वीडियो में आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए बच्चों को आम आदमी पार्टी का समर्थन करते हुए दिखाया गया है। गौरव भाटिया ने कहा कि इस प्रकार की गतिविधियां चुनाव के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी राजनीति के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा नेता ने पुजारियों और ग्रंथियों की योजना को लेकर भी आम आदमी पार्टी की आलोचना की। वहीं आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि भाजपा पुजारियों और ग्रंथियों की विरोधी है और इसलिए वो दिल्ली सरकार द्वारा घोषित कल्याणकारी योजनाओं का विरोध कर रही है।
देखिए, पहली बात तो ये कि कल से जब से पुजारियों और ग्रंथियों के लिए केजरीवाल जी ने सम्मान योजना की घोषणा की है और ये कहा है कि 18,000 रुपये पुजारियों और ग्रंथियों को प्रतिमाह दिया जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है बुरी तरीके से और उनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें।
नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी संदीप दीक्षित ने आज मुख्यमंत्री आतिशी और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। श्री दीक्षित ने कहा कि 5-6 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने उन पर भारतीय जनता पार्टी से बड़ी रकम लेने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि पिछले 10-12 सालों से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और उनके परिवार को निशाना बनाया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। विद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए योग्यता संवर्धन योजना के तहत आवेदन मांगे हैं। ये योजना किसी भी आयु के शिक्षार्थियों को विश्वविद्यालय के विभागों और कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत पाठ्यक्रमों के नियमित विद्यार्थियों के साथ अध्ययन करने का अवसर प्रदान करती है। विश्वविद्यालय ने बताया कि इस योजना के लिए इच्छुक उम्मीदवार 8 जनवरी तक विश्वविद्यालय के पोर्टल और इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम DDA के 297 कर्मचारी आज सेवानिवृत्त हुए। इस अवसर पर दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय स्थित सिविक सेंटर सभागार में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मुख्यालय से 6 और अस्पताल प्रशासन से 7 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए। इसके अलावा सभी क्षेत्रों के उपायुक्तों ने भी अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को भविष्य के लिए शुभकामनाओं के साथ साथ सुखमय जीवन की कामना करते हुए पौधे भेंट किए गए। दिल्ली में दिसंबर महीने में बिजली की मांग 5000 मेगावाट से अधिक दर्ज की गई। राज्य लोड डिस्पैच सेंटर SLDC ने बताया कि बिजली की मांग बीते कल 5046 मेगावाट तक पहुंचने के बाद आज सुबह 10:50 तक 5213 मेगावाट पर पहुंच गई। SLDC ने बताया कि इससे पहले दिसंबर के दौरान दिल्ली की अधिकतम बिजली की मांग दिसंबर 2023 में 4884 मेगावाट और दिसंबर 2022 में 4964 मेगावाट दर्ज की गई थी। SLDC अधिकारियों का अनुमान है कि सर्दी में बिजली की अधिकतम मांग 6300 मेगावाट से अधिक हो जाएगी। दिल्ली पुलिस ने 2 नाइजीरियाई नागरिकों को 442 ग्राम उच्च गुणवत्ता वाली हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके कब्जे से 1 कार और 4 मोबाइल फोन भी जब्त किए। पुलिस ने बताया कि उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के दिशा निर्देशों पर चलाए जा रहे नशा मुक्त दिल्ली अभियान के तहत ये ऑपरेशन पूरा किया गया। पुलिस के अनुसार आरोपी विभिन्न राज्यों से नशे की खेप मंगवाकर दिल्ली में बेचते थे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए आज अतिरिक्त समय दे दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ ने राज्य सरकार के अनुरोध पर यह आदेश दिया और सुनवाई 2 जनवरी तक टाल दी है। पीठ डल्लेवाल को अस्पताल ले जाने की 2 दिन की समय सीमा समाप्त होने के बाद पंजाब सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले की सुनवाई के दौरान पीठ ने डल्लेवाल को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर पंजाब सरकार को फटकार लगाई थी। पीठ ने कहा कि जो लोग डल्लेवाल को अस्पताल नहीं ले जाने दे रहे हैं वे आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की ताजा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार भारत के बैंकों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है और उनकी सकल गैर निष्पादित परिसंपत्तियां GNPA सितंबर 2024 में कुल अग्रिम के 2.6% तक कम हो गई है। ये पिछले 12 वर्षों में सबसे कम है। इस अवधि के दौरान शुद्ध NPA अनुपात लगभग 0.6% रहा है। पिछले 2 वर्षों में बैंकों के GNPA में बड़े कर्जदारों की हिस्सेदारी में लगातार गिरावट आई है। बैंकों के बड़े कर्जदारों की परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार हुआ है। GNPA अनुपात मार्च 2023 में 4.5% से गिरकर सितंबर 2024 में 2.4% रह गया है। महाकुंभ मेला 2025 के दौरान 3000 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी जिनमें से 560 रेलगाड़ियां प्रयागराज में बनाए रिंग रेल मार्ग पर चलेंगी। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में होगा। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक उपेंद्र चंद्र जोशी ने संवाददाताओं को बताया कि मेला क्षेत्र के अलावा प्रयागराज के 9 रेलवे स्टेशनों पर 560 स्थानों पर टिकट उपलब्ध कराई जाएंगी। इन स्टेशनों में प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज, नैनी, प्रयागराज छिवकी, प्रयागराज जंक्शन, फाफामऊ, प्रयागराज रामबाग, प्रयागराज संगम और झूंसी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि इन काउंटरों से प्रतिदिन करीब 10 लाख टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। महाकुंभ के मेले के मद्देनजर रेलवे ने 15 दिन पहले रेलवे टिकट जारी करने की सुविधा शुरू कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नववर्ष 2025 की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि नववर्ष सभी के जीवन में नई उम्मीदों, सपनों और आकांक्षाओं की शुभारंभ का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने लोगों से कहा कि वे प्रसन्नता और उत्साह के साथ नववर्ष का स्वागत करें और समाज तथा राष्ट्र को एकता और उत्कृष्टता के मार्ग पर आगे ले जाएं। नववर्ष 2025 के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली तैयार है। राजधानी में नए साल की पूर्व संध्या पर सुरक्षा और सुगम यातायात के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि लोग बिना किसी परेशानी के नए साल का जश्न मना सके इसके लिए प्रशासन ने भी खास दिशा निर्देश जारी किए हैं।
दिल्ली के प्रमुख होटलों, शॉपिंग मॉल और रेस्तरों में नए साल की पूर्व संध्या पर जश्न के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली के क्लबों में लाइव म्यूजिक और खास डीजे नाइट्स का आयोजन भी किया जा रहा है। नववर्ष की पूर्व संध्या के लिए दिल्ली पुलिस ने भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। बाजारों, मॉल, फाइव स्टार होटलों, रेस्तरों, शराब की दुकानों के आसपास दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद रहेंगे। वहीं मंडी हाउस, बंगाली मार्केट, मिंटो रोड, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग चौराहा, जीपीओ, नई दिल्ली, पटेल चौक और जयसिंह रोड, बंगला साहिब लेन की ओर से कनॉट प्लेस की तरफ किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं है। कनॉट प्लेस के इनर, मिडल और आउटर सर्किल में केवल वैध पास वाले वाहनों को ही जाने की अनुमति है। इंडिया गेट पर पैदल यात्रियों तथा वाहनों के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने बताया है कि नववर्ष की पूर्व संध्या पर राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 5 और 6 से प्रवेश और निकास प्रतिबंधित रहेगा। प्रादेशिक समाचार के लिए अक्षित वैद्यान।
पुलिस उपायुक्त सचिन शर्मा ने बताया कि नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्ली पुलिस और बाहरी जिला ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।
नववर्ष की पूर्व संध्या पे दिल्ली पुलिस और आउटर डिस्ट्रिक्ट ने पूरे पुख्ता इंतजाम किए हैं। जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं इनको कवर किया जा रहा है। सेंसिटिव एरियाज हैं जो उनके अंदर हम लोगों ने एक तो पहले ही थाना लेवल पे मीटिंग्स हुई हैं, लोगों को भी अवगत कराया है कि जिम्मेदारी से नववर्ष का स्वागत करें और किसी भी तरह का कोई अप्रिय घटना न हो, इसकी भी जो सूटेबल डायरेक्शन है वो पास ऑन करी है।
हॉकी इंडिया लीग में आज दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से होगा। ये मैच राउरकेला में रात 8:15 बजे से खेला जाएगा। दिल्ली ने अब तक एक मैच खेला है जिसमें शूट ऑफ में जीत के साथ वो 2 अंक लेकर तालिका में तीसरे स्थान पर है। उधर हैदराबाद को अपने पहले मैच में हार मिली है, अंक तालिका में उसका खाता नहीं खुला है। दिल्ली में खो खो विश्व कप की शुरुआत 13 जनवरी को होगी। पहला मैच भारत और नेपाल के बीच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। खो खो विश्व कप आयोजन समिति के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल ने बताया कि महिला वर्ग का फाइनल 19 जनवरी को शाम 7 बजे से और पुरुष वर्ग का फाइनल रात 8:15 बजे से होगा। पुरुष और महिला टीमों को 4-4 वर्गों में बांटा गया है। पुरुष वर्ग में भारत, नेपाल, पेरू, ब्राजील और भूटान को ग्रुप ए में रखा गया है। दक्षिण अफ्रीका, घाना, अर्जेंटीना, नीदरलैंड और ईरान ग्रुप बी में शामिल हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और पोलैंड को ग्रुप सी में, जबकि इंग्लैंड, जर्मनी, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया और केनिया को ग्रुप डी में रखा गया है। महिला वर्ग में भारत, ईरान, मलेशिया और दक्षिण कोरिया को ग्रुप ई में रखा गया है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, केनिया, युगांडा और नीदरलैंड ग्रुप बी में है। नेपाल, भूटान, श्रीलंका, जर्मनी और बांग्लादेश ग्रुप सी में, जबकि दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, पोलैंड, पेरू और इंडोनेशिया ग्रुप डी में रखे गए हैं। विश्व कप में महिला और पुरुष वर्ग में 20 देश कुल 90 मैच खेलेंगे। और अब मौसम। शीतलहर के चलते दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में कोहरा छाए रहने और शीतलहर चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा, असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में भी घने कोहरे का अनुमान जताया है। अगले 2 से 3 दिन तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी इसी तरह की स्थिति रहने की उम्मीद है। इस बीच रेलवे ने जानकारी दी है कि कोहरे के कारण लगभग 30 रेलगाड़ियां देरी से चल रही हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने सरकार को आशा कार्यकर्ताओं के मौजूदा भत्ते को 3,000 से बढ़ाकर 9,000 करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लंबित वेतन को जल्द जारी करने की सलाह दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की घोषित पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। भारतीय जनता पार्टी ने की आलोचना। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए योग्यता संवर्धन योजना के तहत आवेदन मांगे। नववर्ष 2025 के स्वागत के लिए राजधानी दिल्ली तैयार। प्रशासन ने भी खास दिशा निर्देश जारी किए। और हॉकी इंडिया लीग में आज दिल्ली एसजी पाइपर्स का मुकाबला हैदराबाद तूफान से। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।